नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। इट्स स्टीव क्लाइंस और मार्शिया लॉफ्री की पुस्तक एक्टिव डायरेक्टरी फॉर डमीज श्रृंखला की तकनीकी मार्गदर्शिका है। यह संस्करण विंडोज सर्वर 2008 के दौर की माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी को समझाने पर केंद्रित है। पुस्तक का उद्देश्य केवल यूजर खाते बनाना सिखाना नहीं, बल्कि उस निर्देशिका सेवा की संरचना, योजना और निरंतर संचालन को स्पष्ट करना है जो किसी विंडोज डोमेन नेटवर्क में पहचान, पहुंच और संसाधनों का प्रबंधन करती है। क्लाइंट्स के बड़े एंटरप्राइज परिनियोजनों के अनुभव का प्रभाव इसकी व्यावहारिक दिशा में दिखता है। इसमें डोमेन कंट्रोलर, डीएनएस, डोमेन ट्री, फॉरेस्ट, साइट, ग्रुप पॉलिसी, प्रतिकृति और स्कीमा जैसे विषय क्रमबद्ध रूप से आते हैं। भाषा आरंभिक पाठक के लिए सुलभ रखी गई है, फिर भी पुस्तक यह रेखांकित करती है कि गलत डिजाइन या ढीला प्रशासन नेटवर्क सुरक्षा और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यह स्थापना से लेकर रखरखाव और समस्या निवारण तक का व्यापक परिचय देती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, एक्टिव डायरेक्टरी को नेटवर्क की पहचान और संगठन व्यवस्था के रूप में समझना। पुस्तक का आधारभूत विचार यह है कि एक्टिव डायरेक्टरी को केवल एक सर्वर भूमिका या उपयोगकर्ता सूची मानना पर्याप्त नहीं है। यह विंडोज डोमेन वातावरण की निर्देशिका सेवा है जिसमें उपयोगकर्ता, कंप्यूटर, समूह और अन्य संसाधनों की जानकारी संगठित की जाती है। इसी केंद्रीय व्यवस्था के कारण व्यवस्थापक अलग अलग मशीनों पर खाते और अनुमतियां संभालने के बजाय एक साझा ढांचे में पहचान तथा पहुंच नियंत्रित कर सकता है। पुस्तक निर्देशिका सेवा LDAP और डोमेन कंट्रोलर की भूमिका को इस बड़े संदर्भ में रखती है। डोमेन कंट्रोलर प्रमाणीकरण और निर्देशिका जानकारी उपलब्ध कराते हैं, इसलिए उनका चयन और संचालन साधारण सर्वर प्रशासन से अधिक महत्वपूर्ण है। लेखक का व्यावहारिक संकेत यह है कि तकनीक को अपनाने से पहले संस्था की जरूरतों को समझना चाहिए। कितने उपयोगकर्ता हैं, कार्यालय कहाँ है, किन संसाधनों को साझा करना है और कौन सी प्रशासनिक सीमाएं आवश्यक हैं, ये प्रश्न संरचना को प्रभावित करते हैं। इस दृष्टि से पुस्तक शुरुआती पाठक को शब्दावली याद करने के बजाय वस्तुओं, पहचान और प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध को समझने में सहायता देती है। हालांकि इसमें वर्णित उत्पाद विशेष प्रक्रियाएं आज के विंडोज सर्वर संस्करणों से पुरानी हो सकती हैं, केंद्रीय निर्देशिका की यह अवधारणा अब भी उपयोगी है। दूसरा, DNS नेमस्पेस, डोमेन ट्री और फॉरेस्ट की डिजाइन पर जोर पुस्तक एक्टिव डायरेक्टरी डिजाइन के तार्किक पक्ष को गंभीरता से लेती है। DNS नेमस्पेस, डोमेन ट्री और फॉरेस्ट ऐसे निर्णय हैं जिन्हें बाद में बदलना कठिन और महंगा हो सकता है। DNS केवल नामों को पते से जोड़ने वाली सहायक सेवा नहीं है, बल्कि एक्टिव डायरेक्टरी के कार्य करने की बुनियादी निर्भरता है। इसलिए सही नामकरण, जोन और संसाधन अभिलेखों की समझ जरूरी बनती है। डोमेन प्रशासनिक और सुरक्षा सीमाओं से जुड़ा होता है, जबकि ट्री और फॉरेस्ट बड़ी संरचनाओं में नामस्थान और विश्वास संबंधों को व्यवस्थित करने के तरीके हैं। पुस्तक पाठक को इस निष्कर्ष तक ले जाती है कि हर विभाग या भौगोलिक स्थान के लिए अलग डोमेन बनाना स्वतः बेहतर डिजाइन नहीं है। अधिक डोमेन का अर्थ अधिक जटिलता, अधिक प्रशासन और अधिक निर्भरताएं भी हो सकता है। डिजाइन को व्यावसायिक लक्ष्य, तकनीकी सीमाएं और भविष्य की वृद्धि तीनों के आधार पर तय करना चाहिए। यह भाग विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि यह स्थापना विजार्ड से आगे जाकर योजना के परिणामों पर ध्यान देता है। इसका मूल सबक है कि तार्किक संरचना को संस्था की वास्तविक प्रबंधन जरूरतों से जोड़ें, न कि केवल तकनीकी नामों या पुराने संगठन चार्ट की नकल से। तीसरा, साइट टोपोलॉजी और मल्टीपल मास्टर प्रतिकृति का संचालनात्मक महत्व। बड़े या कई स्थानों वाले नेटवर्क में एक्टिव डायरेक्टरी की विश्वसनीयता प्रतिकृति पर निर्भर करती है। पुस्तक भौतिक संरचना के अंतर्गत साइट, साइट लिंक, नेटवर्क सेवाएं और साइट टोपोलॉजी का परिचय देती है। इसका उद्देश्य यह समझाना है कि कार्यालयों के बीच नेटवर्क कनेक्शन समान नहीं होते। एक ही परिसर में तेज संपर्क हो सकता है, जबकि दूरस्थ शाखा सीमित बैंडविड्थ या धीमी कड़ी पर चल सकती है। साइटों को वास्तविक नेटवर्क उपजालों के अनुरूप परिभाषित करने से क्लाइंट को निकटतम डोमेन कंट्रोलर और सेवाओं तक अधिक उपयुक्त पहुंच मिलती है। पुस्तक यह भी बताती है कि एक्टिव डायरेक्टरी बहु मास्टर मॉडल अपनाती है, जिसमें सामान्यतः अनेक डोमेन कंट्रोलर निर्देशिका परिवर्तन पढ़ और लिख सकते हैं। यह उपलब्धता बढ़ाता है पर प्रतिकृति के प्रबंधन को महत्वपूर्ण बना देता है। साइट लिंक और प्रतिकृति यातायात की गलत योजना, धीमे लॉग ऑन, बैंडविड्थ दबाव या असंगत निर्देशिका जानकारी जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है। इसलिए यह विषय केवल नेटवर्क इंजीनियरिंग का विवरण नहीं है, बल्कि उपयोगकर्ता अनुभव और प्रशासनिक विश्वसनीयता का प्रश्न है। पुस्तक की ताकत यह है कि यह तार्किक डोमेन डिजाइन और भौतिक नेटवर्क डिजाइन को अलग लेकिन परस्पर निर्भर स्तरों के रूप में प्रस्तुत करती है। चौथा, उपयोगकर्ता समूह और ग्रुप पॉलिसी के माध्यम से नियंत्रित पहुंच। पुस्तक के प्रशासनिक पक्ष में उपयोगकर्ता ऑब्जेक्ट समूह और ग्रुप पॉलिसी प्रमुख साधन है। एक उपयोगकर्ता खाता केवल लॉग ऑन नाम नहीं होता, वह पहचान, प्रमाणीकरण और अधिकारों से जुड़ा रिकॉर्ड है। इसलिए खाते बनाना, बदलना और हटाना सावधानी से किया जाना चाहिए। समूहों का उपयोग समान प्रकार की पहुंच आवश्यकताओं वाले लोगों को एक साथ प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। इससे हर व्यक्ति को अलग अलग अनुमति देने की तुलना में प्रशासन अधिक सुसंगत और जांच योग्य बनता है। ग्रुप पॉलिसी इस केंद्रीय नियंत्रण को आगे बढ़ाती है, क्योंकि इसके द्वारा उपयोगकर्ता और कंप्यूटर विन्यास, सुरक्षा विकल्प और नेटवर्क व्यवहार जैसी सेटिंग्स लागू की जा सकती है। पुस्तक का निहित संदेश है कि नीति का लाभ तभी मिलता है जब संगठनात्मक संरचना समझदारी से बनाई जाए और नियम स्पष्ट हों। बिना योजना के अत्यधिक या परस्पर विरोधी नीतियां समस्या खोजने को कठिन बना सकती हैं। इसी तरह जरूरत से अधिक व्यापक समूह सदस्यता न्यूनतम आवश्यक पहुंच के सिद्धांत को कमजोर करती है। इस भाग में तकनीकी सुविधा को सुरक्षा अनुशासन से जोड़ा गया है। पाठक सीखता है कि केंद्रीय प्रशासन का अर्थ केवल तेजी नहीं, बल्कि नियंत्रित, दोहराने योग्य और कम जोखिम वाला संचालन भी है। अंत में स्कीमा, निर्देशिका, डेटाबेस और रखरखाव में सावधानी की आवश्यकता। पुस्तक एक्टिव डायरेक्टरी के उन हिस्सों तक भी जाती है जिन्हें रोजमर्रा के प्रशासन में अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, जैसे स्कीमा, निर्देशिका, डेटाबेस। निगरानी और समस्या निवारण, स्कीमा यह निर्धारित करता है कि निर्देशिका में किस प्रकार के ऑब्जेक्ट और गुण मौजूद हो सकते हैं। यह विशेष रूप से तब प्रासंगिक होता है जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज जैसे अनुप्रयोग एक्टिव डायरेक्टरी में अपना डेटा रखने के लिए नए ऑब्जेक्ट या गुण जोड़ते हैं। पुस्तक का सावधान रुख उचित है, क्योंकि स्कीमा में बदलाव पूरे फॉरेस्ट के स्तर पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसे सामान्य प्रयोग का क्षेत्र नहीं मानना चाहिए। इसी प्रकार निर्देशिका, डेटाबेस और प्रतिकृति की निगरानी को केवल समस्या आने के बाद की गतिविधि नहीं समझना चाहिए। नियमित जांच से असफल प्रतिकृति, सेवा संबंधी त्रुटियों और प्रशासनिक गलतियों के संकेत जल्दी मिल सकते हैं। पुस्तक बैकअप, डेटाबेस, रखरखाव और सामान्य भूलों के प्रति भी ध्यान दिलाती है। इसका व्यावहारिक मूल्य इस बात में है कि यह एक्टिव डायरेक्टरी को एक बार स्थापित कर भूल जाने वाली प्रणाली नहीं मानती। पहचान और पहुंच की केंद्रीय भूमिका के कारण इसके परिवर्तन नियंत्रित होने चाहिए, सुरक्षा प्रभाव समझे जाने चाहिए और पुनर्प्राप्ति की तैयारी पहले से होनी चाहिए। निष्कर्ष में एक्टिव डायरेक्टरी फॉर डमीज उन नए आईटी प्रशासकों, हेल्प डेस्क कर्मियों और विंडोज सर्वर सीखने वाले पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जिन्हें एक्टिव डायरेक्टरी का व्यवस्थित आधार चाहिए। यह उन अनुभवी व्यवस्थापकों के लिए भी उपयोगी पुनरावलोकन हो सकती है जो डोमेन डिजाइन, डीएनएस निर्भरता, साइट संरचना, प्रतिकृति और नीति आधारित प्रशासन के संबंधों को फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं। पुस्तक की विशेषता इसका व्यापक दायरा है। अनेक आरंभिक संसाधन उपयोगकर्ता खाते या एकल प्रशासनिक कार्य पर रुक जाते हैं, जबकि यह तार्किक डिजाइन, भौतिक नेटवर्क, सुरक्षा नियंत्रण और निरंतर रखरखाव को एक ही प्रशासनिक जीवन चक्र में जोड़ती है। लेखक के बड़े परिनियोजन अनुभव के कारण इसका जोर उन निर्णयों पर है जिनकी गलती बाद में महंगी पड़ती है, जैसे नामस्थान, डोमेन सीमा, साइट लिंक और स्कीमा परिवर्तन। साथ में दिए गए डिजाइन बिंदु, ऑनलाइन संसाधन और समस्या निवारण संकेत इसे संदर्भ पुस्तक का उपयोग भी देते हैं। फिर भी पाठक को इसकी समय सीमा समझनी चाहिए। यह दूसरा संस्करण विंडोज सर्वर 2008 के संदर्भ में लिखा गया था, इसलिए हार्डवेयर आवश्यकताएं, इर स्क्रीन आधारित निर्देश और कुछ उत्पाद प्रक्रियाएं आधुनिक परिवेश के लिए अद्यतन नहीं मानी जानी चाहिए। इसके बावजूद केंद्रीय पहचान प्रबंधन, डीएनएस एकीकरण, प्रतिकृति योजना और न्यूनतम पहुंच जैसे सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। अतः इसे आधुनिक माइक्रोसॉफ्ट दस्तावेजीकरण के साथ पढ़ना सबसे व्यावहारिक तरीका है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं स्टीव क्लाइंस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।